الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو کلاس کے اندر ہم کیا پڑھ رہے تھے آخری دفعہ؟ جی ریحان، باغ، کیا نام تھا باغ کا؟ فدق، جی فدق، تو فندق نہیں. جی انہوں نے لکھا ہے کہ وی آر اسٹڈینگ اباؤٹ دی لینڈ آف فدق ان خیبر. ہاں، تو فدق کے باغ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے سمجھنا. تو اس کو جو ہے نا، پھر شیطان اور برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر صحابہ کرام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو یعنی کنفیوز کرنے کے لیے اور بری باتیں ان کو کہنے کے لیے، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ کیوں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اس والے مسئلے کو، صحابہ کرام کے خلاف کیوں استعمال کر پاتے ہیں، یہ بس جلدی سے کوئی بتا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کیوں ان کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے اس والے مسئلے کو استعمال کرنا؟ اچھا نہیں، یہ تو آپ نے جواب تو نہیں دیا، آپ کیا بتا رہے؟ شیخ نہیں ہوتا، وہ تو دوسرا والا مسئلہ تھا. چلیں اب آپ بتا دیجیے.
یہ کہ جب جذباتی معاملہ ہے اور جب جذبات والے بڑے آدمی ہیں تو عقل موقوف ہو جاتا ہے.
جی، اور ماشاءاللہ آن لائن بھی دونوں طرف صحیح جواب آئے ہیں کہ یہ ایک ایموشنل مسئلہ ہے، یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے. جذبات کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے شیطان کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی انسان جذباتی لگاؤ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، تو پھر شیطان کے لیے اس کو خراب کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں، یعنی جذبات بڑھ جاتے ہیں، تو کیا چیز نیچے چلی جاتی ہے؟ عقل نیچے چلی جاتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بہت جذباتی معاملہ ہے، بہت زیادہ. کیوں جذباتی معاملہ ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، یہ تو وہ تو تھا، وہ تو واقعہ ایسے ایسے ہوا تھا، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کیوں، وائے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہاؤ کی بات نہیں کر رہے بلکہ وائے کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ وہ اہل بیت تھے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر بیٹی، ہے نا، محبوب ترین بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، رائٹ؟ اتنی زبردست شخصیت، اور وہ یہاں پر آئی تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے کے لیے کہ یہ باغ جو ہے میرے والد صاحب کی ملکیت تھی، تو اب یہ مجھے ملنا چاہیے وراثت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بیٹی کو وراثت کے اندر حق ملتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انکار کر دیا تھا کہ نہیں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اس انکار سے ناراض ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ وہ خوش نہیں ہوئی تھیں کہ ان کی بات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے منع کر دیا، تو وہ گھر چلی گئی تھیں. اور آپ کو بتایا تھا کہ پھر بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کر کے ان کو منایا تھا، ان کو سمجھایا تھا، پیار محبت سے بات کری تھی. علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس وقت پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ راضی ہو گئی تھیں، خوش ہو گئی تھیں، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر بات شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہو، خیر خواہی ہو، آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہو، اور آپ جو کام کر رہے ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، تو یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہوتی کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، کسی کو کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن उसमें जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिद क्या होती है कि बस मैंने जो कह दिया ना उसको पूरा होना चाहिए और बस उसके अलावा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस मेरी बात माननी चाहिए। ये कैसे इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब इसने मेरी बात नहीं मानी अब मैं इसका दुश्मन बन जाऊंगा, राइट, अब मैं इसके खिलाफ जो है ना वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसको ये मेरी बात नहीं मानी इसने, ये कैसे हो सकता है भाई। ये जो मुकाम है ना कि मेरी बात नहीं मानी, ये मुकाम किसका है, किसको हक है इस बात का? अंकल जवाब देंगे नहीं, बच्चों से जवाब पूछे, किसका हक है ये कि मेरी बात मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। अल्लाह, राइट, ये मकाम तो अल्लाह का है ना, ठीक है ना। और इंसानों में ये मकाम जो है वो, माशाल्लाह बहुत सारे जवाब आए थे यहाँ पे, बिल्कुल सही, इंसानों में ये मकाम किसका है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, ठीक है ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क्यों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देते हैं वो अल्लाह ही का हुक्म होता है, वो अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दे रहे होते, वो अल्लाह ही का हुक्म होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझें, इसको याद रखें कि जिद नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है ना। और हमारे अंदर जो है वो नेक नीयत ही होनी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, खैरख्वाही, हत्ता के अपनी भी, अपनों की भी खैरख्वाही, दोस्तों की भी खैरख्वाही। खैरख्वाही का मतलब समझते हैं ना सारे लोग, राइट, कि भाई यू वॉन्ट गुड फॉर समवन एल्स, आप दूसरों का भला चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं कि लोग जो है वो नुकसान से बच जाएं और उनको अच्छी चीज मिल जाए, इसको खैरख्वाही कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन उन नसीहा, दीन तो पूरा का पूरा खैरख्वाही है, राइट, हर एक के लिए खैरख्वाही, ठीक है, दुश्मन के लिए भी खैरख्वाही। दुश्मन की खैरख्वाही क्या होती है कि दुश्मन जो है ना वो गलत कामों से बाज आ जाए, तौबा कर ले, राइट, और जहन्नुम से बच जाए, राइट, नुकसान से बच जाए। तो ये दुश्मन की भी तो खैरख्वाही हुई ना ये, ठीक है ना। अब वो जब लड़ाई पे उतरता है तब मजबूरन हम उससे लड़ते हैं और फिर वो मारने मारने का सिलसिला बनता है, लेकिन वो मजबूरी में करना पड़ता है, आखिरी दर्जा है वो लड़ने का दर्जा, ठीक है ना, वरना तो खैरख्वाही है भाई। दावत और तबलीग का काम नॉन कन्फ्रंटेशनल, ठीक है ना, दावत दें, समझाएं बात को, जो सच्ची बात है उसको दलाइल के साथ पहुंचाएं, प्रूफ के साथ पहुंचाएं, और अगले बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करें ताकि वो गलती से बात आ जाए, ठीक है। तो सहाबा के अंदर सबसे बेहतरीन बात क्या होती थी कि वो खैरख्वाही करते थे एक दूसरे की, अद्दीन उन नसीहा, नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर अमल करते थे, ठीक है। तो इस वजह से ना जिद नहीं होती थी तो मसला जो है वो हल हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि मसला जो है वो हल हो गया। अच्छा, ये मसला चलता रहा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मसला तो हल हो गया, वो तो मान गई, बात बात समझ गई, खत्म हो गई बात, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये आगे भी चलता रहा, और वो क्या हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है ना, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कब हो गया था बताएं?
इंतकाल
नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ 6 महीने के बाद, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया, ठीक है। जब नबी अलैहिस्सलाम, बिल्कुल आखिरी वक्त था नबी अलैहिस्सलाम का, तो उस वक्त फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आकर के उन्होंने आप को देखा, बहुत तकलीफ में थे, बुखार की शिद्दत थी, गर्म हो रहे थे बुखार की वजह से और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। तो फातिमा रतान जो है ना वो रोना शुरू हो गई, ठीक है ना, वालिद साहब की ऐसी तकलीफ देख करके। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फातिमा रतान के कान में कुछ कहा, ठीक है, तो फातिमा रतान जो है वो हंसना शुरू हो गई, ठीक है। तो आयशा रतान वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने देखा कि ये क्या, कि अभी जो है वो रो रही थी, अभी जो है वो हंसना शुरू हो गई, तो उनको ना अच्छी बात नहीं लगी कि इतनी तकलीफ में नबी अलैहिस्सलाम और फातिमा जो है वो हंस रही हैं, ठीक है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाद में फिर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने पूछा कि ये आपने क्या किया था उस वक्त, नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त में आप हंस क्यों रही थी? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कान में ये बात कही थी कि फातिमा मेरे इस दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले तुम आकर के मुझसे मिलोगे, ठीक है ना, तुम आके मुझसे मिलोगी। तो जब मैंने ये सुना तो मैं खुश हो गई, मैं हंसना शुरू हो गई, वाह क्या बात है, ठीक है ना, यानी मेरे बाद सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा मेरे खानदान वालों में से। तो इनका इंतकाल तो 6 महीने के बाद हो गया था। तो उसके बाद फिर हजरत अब्बास रहता है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के सगे चचा थे ना, अंकल ना, रियल अंकल, और हजरत अली रतान जो है वो जो कि फर्स्ट कजन थे नबी अलैहिस्सलाम के, तो ये दोनों भी फिर आए थे और उन्होंने भी कहा था कि भाई ये जो बाग है ना फिदक का, तो नबी अलैहिस्सलाम कि ठीक है ये मिल्कियत नहीं है, हमें बात पता चल गई है भाई, आप या हमें मालूम थी ये बात की मिल्कियत नहीं है नबी अलैहिस्सलाम की, ये अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की या नमकल्ला की विला क्या कहते हैं उसको तौलियत में दिया था। तौलियत क्या, यानी आप बेसिकली वकील के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे और गरीबों की मदद किया करते थे इससे, ठीक है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, हम इसकी मिल्कियत आपसे नहीं मांग रहे, हमें नहीं इसकी मिल्कियत चाहिए, लेकिन ये जो बाग की आमदनी को गरीबों पे खर्च करना है ना, ये आप हमारे हवाले कर दें, हम इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे खानदान के बुजुर्ग थे नबी अलैहिस्सलाम, वो इसको मैनेज किया करते थे, तो अब हम उसी खानदान के लोग हैं, अब हम मैनेज किया करेंगे, आप हमें दे दीजिए, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया था कि नहीं, ये खलीफा वक्त की तौलियत में ही रहेगा और मैं ही इसका इंतजाम करूंगा, जैसे मैंने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी यही बता दिया था और वो भी मेरी बात पे राजी हो गई थी। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इसी को कंटिन्यू किया कि वही जो है ना, फिर यानी बेसिकली गवर्नमेंट के पास ये चीज रही, ठीक है ना, इसको गवर्नमेंट ने आउटसोर्स नहीं किया बल्कि अपने पास ही इस बात को, इस कंट्रोल को रखा, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट का ये फैसला हुआ के इनके हवाले कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर अब्बास रतान और अली रतान के हवाले कर दिया, फिर वो उसको मैनेज किया करते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है ना, तो उसको इस किस्म के डिसीशंस लेने का शरीयत में इख्तियार होता है, ठीक है। जो खलीफा वक्त होता है उसके पास जो है वो इज्तिहाद का की ताकत होती है, वो इज्तिहाद करके फैसला कर सकता है कि इस वक्त ये ज्यादा बेहतर चीज है, थोड़े अरसे के बाद जो है वो ये चीज ज्यादा बेहतर हो जाएगी लोगों के लिए और सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो इस तरह से चेंजेस करते रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये चीज, और ये जाहिर है खिलाफ शरीयत तो कोई चीज नहीं है ना, वो काम खलीफा भी नहीं कर सकता जो कोई गुनाह हो, गुनाह तो खलीफा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये तो गुनाह वाला काम नहीं था कि आपने अपने पास से तौलियत जो है वो किसी और के हवाले कर दी। बहरहाल तो ये सारी बातें हो गई, इसके बाद जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के चंद गोशे जो हजरत हमारे मरहूम इश्तियाक अहमद साहब ने लिखे थे, तो वो आपके सामने मैं पढ़ना चाह रहा था कि अच्छा, दुनिया में अंबिया कराम के बाद सबसे आला मुकाम किसको हासिल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को, ठीक है, यानी नॉन अंबिया में से अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो सबसे अफजल मुकाम रखते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को ही नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, और कई नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, शायद 18 नमाजें हमने पढ़ी थी उस जमाने में जब हम पढ़ रहे थे आखिरी जमाने का आप सुन के, 18 नमाजें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पढ़ाई थी। अच्छा, इस्लाम में सबसे पहले मस्जिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई, क्या मतलब मस्जिद सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने बनाई, कि इसको फंड जो है ना मस्जिद नबवी को फंड किसने किया था, अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने इसके लिए पैसे दिए थे नबी अलैहिस्सलाम को। आप सबसे पहले खलीफा रसूल हैं, आदर ने सबसे पहले आपको दोजख से निजात की खुशखबरी सुनाई, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि आज तुम में रोजेदार कौन है, तुम में से रोजा किसने रखा हुआ है, तो सब खामोश, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैंने रोजा रखा हुआ है नबी अलैहिस्सलाम। फिर पूछा कि तुम में से आज जनाजे में किसने शिरकत की, तो उसमें भी अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अल्लाह के नबी, मैंने आज जनाजे में भी शिरकत करी है। फिर पूछा कि आज मिस्कीन को किसने खाना खिलाया है, गरीब मिस्कीन को किसने खाना खिलाया, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खाना खिलाया है, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं तो जवाब देना भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि भाई नहीं मैं तो छुपाना चाहता हूँ, मैं नेकी किसी को नहीं बताऊँ, भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, कोई मामूली आदमी को थोड़ी पूछ रहा है, बताना जरूरी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा कि मरीज की आयादत किसने की, यानी किसी गरीब किसी मरीज के पास जाकर के उसकी जो हाल चाल पूछना होता है, उससे दुआ देनी होती है, उसको दुआ लेनी होती है, तो उसको इयादत करना कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रतान बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने की है। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन में इतनी नेकियां की हैं ना, वो यकीनन जन्नत में जाएगा, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रतान को कई बार जो है वो नबी अलैहि सल्लम की जुबान मुबारक से जन्नत की खुशखबरियां मिलती रहती थी, ठीक है। अशरा मुबशरा में भी सबसे अव्वल नाम जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के जो अहले बैत थे, यानी जो घर के अफराद थे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं और उनकी औलादें हैं और अजवाज मुताहरात हैं, तो इनका भी सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। तो एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ाकर मस्जिद से निकले तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर आए। ठीक है, हजरत हसन रज़ी अल्लाह जो है वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने कंधे के ऊपर बैठा लिया, ऐसे उठाकर, जैसे छोटे बच्चों को जो कंधे में बैठा लेते हैं। एक मरतबा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने माल गनीमत मदीना मुनव्वरा भेजा, इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक खूबसूरत तोहफा भी भेजा, तो आपने वो तोहफा हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। ठीक है, उस वक्त कंधे पे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बैठाया था, अब जो है वो तोहफा जो है वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। आप खुद ही उनका ख्याल नहीं रखते थे बल्कि दूसरों से भी कहते थे कि इनका ख्याल रखो, ये नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, घर वाले हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात हुई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। ठीक है, आप इनके शौहर थे और माशाल्लाह तो आप भी बहुत बड़े सहाबी हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। ठीक है ना, यानी जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम दुनिया में थे तो ये काम नबी अलैहिस्सलाम सलाम किया करते थे ना, ईमान वालों की नमाज जनाजा पढ़ाना। अब आप उनके खलीफा हैं तो आप उनकी जगह पर सारे काम करेंगे, इस तरह के सारे जो अजमत वाले काम होते हैं, इज्जत वाले काम होते हैं, तो आप नमाज जनाजा पढ़ा। तो अली रज़ी अल्लाह उन्होंने इनको कहा, तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई। अच्छा, दूसरी ये कि आपने सुना ही होगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा उन लोगों में से थे कि जिन्होंने अपने इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया, कभी बुतों की परस्तिश नहीं करी। ठीक है ना, तो ये उन लोगों में से थे जो के यानी फितरत के ऊपर थे। फितरत इंसान की अल्लाह ताला ने बनाई है कि वो शिर्क नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही को अपना माबूद मानता है, तो ये असहाबे फितरत में से थे। अच्छा, नबी अलैहि सलाम ने भी कभी ऐसा नहीं किया, और कुछ लोग और भी थे जिन्होंने इवन इस्लाम से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं करी थी। अच्छा, बहुत ही पाकीज़ा थे और पाक माल ही खाना पसंद करते थे। आपका एक गुलाम एक मरतबा कुछ खाने की चीज़ लेकर के आया, तो उस वक्त आपको बड़ी भूख लगी हुई थी तो आपने लेकर के खा लिया। फिर उन ख्याल आया कि ये पता नहीं कहाँ से लेकर के आया था, कहाँ से इसने चीज़ खरीदी, ऐसे नहीं बैठते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो आगे ही बैठे, तो उन्होंने पूछा कि जी कहाँ से तुम लेकर के आए, तो गुलाम ने बताया कि मैं ना एक जमाने में झूठ मूठ का झाड़ फूंक का काम किया करता था। लोगों को जो है ना ऐसे कहता था कि जी मुझे जो है वो झाड़ फूंक का मतलब ये होता है कि कुछ पढ़ करके फूंक दिया ताकि जो है ना वो बीमारी दूर हो जाए, तो इस तरह के मैं काम करता था, झूठ मूठ का मुझे आता हुआ था कुछ नहीं था, यानी बेसिकली मैं धोखा दे करके पैसे कमाता था लोगों से। ठीक है, तो वो जो मैंने पैसे कमाए थे ना, तो उससे मैं चीज लेकर के आया था आपके पास खाने के लिए, तो उनको पता चला तो उन्होंने जो है ना वो ऐसे करना शुरू किया कि जैसे वो जो खाया है ना वो बाहर निकल जाए, उल्टी हो जाए, तय कर ले उसको, लेकिन वो हो नहीं रहा था बाहर। अब अंदर चला गया तो अब कैसे बाहर आएगा, तो उन्होंने जो है ना वो उंगलियां डालनी शुरू करी ऐसे करके कि बाहर निकल आए, पानी पीना शुरू किया, इतना पिया कि उल्टी हो गई उनको, वाकई हो गई। लोगों ने कहा कि आप क्यों इतनी ज्यादा अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि अगर मुझे यकीन होता ना कि मेरे मरने से ही ये चीज मेरे अंदर से निकलेगी तो मैं वो भी कर जाता, यानी ये जो हराम माल जो उसने मुझे दिया ना खाने को, ये मैं अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे अंदर हराम की चीज चली जाए। ठीक है, एक मरतबा एक चिड़िया को दरख्त पर बैठे हुए देखा तो फरमाया कि वाह वाह ए चिड़िया, तू कितनी खुश नसीब है, ऐ काश के मैं भी तुझ जैसा होता। तू दरख्त पर बैठती है, फल खाती है और फिर उड़ जाती है, तुझसे ना कोई हिसाब किताब होगा ना तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा। तो काश के मैं भी तुम्हारी तरह का एक चिड़िया होता, काश के मैं एक तिनका होता, कि मैं भी एक दरख्त में होता, ऊँट मेरे ऊपर से गुजर जाता, मुझे चिबा जाता, राइट, मुझसे हिसाब किताब तो ना लिया जाता। ठीक है, ऐसा अल्लाह ताला को उनको खौफ था। कभी अगर किसी को कुछ सख्त बात कह देते थे ना, तो जब तक उससे माफी ना मांगते थे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे। इसका वाकया गालबन आपने आदाब की क्लास के अंदर भी पहले सुना था। एक मरतबा अपनी जुबान पकड़ कर खींच रहे थे, हजरत उमर हजरत ने ऐसा करते हुए देख लिया तो हैरान होकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं, जुबान पकड़ के ऐसे बाहर करके खींच रही है। फरमाया कि इसी जुबान ने तो मुझे तबाह किया है। ठीक है, कि मुझसे जो गलत बातें निकल जाती हैं तो फरिश्ते जो है उसको लिख लेते हैं। हुमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। ठीक है, सूरह काफ के अंदर है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई चीज मुंह से नहीं निकलती सिवाय इसके कि रकीबुन अतीद जो है ना वो उसको लिख लेते हैं। दाएं बाजू वाला फरिश्ता अच्छी बात को लिख लेता है और बाएं बाजू वाला फरिश्ता जो है बुरी बात को लिख लेता है, और फिर इट विल बी यूज अगेंस्ट अस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, जब अमेरिका के अंदर किसी मुजरिम को पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, तो उसको जो है ना ये सुनाते हैं, वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। इसका जो है वो अपने अल्फाज में मफहूम समझाते हैं कि एनीथिंग यू से और डू कैन एंड विल बी यूज अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है ना, कैन बी यूज अगेंस्ट यू एंड विल बी यूज अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अपनी जुबान संभाल करके रखना। अब हम आ गए हैं, राइट, अब पुलिस वाले आ गए हैं तुम्हारे पास, अब तुम जो है ना वो आजाद नहीं हो, तो ध्यान से चलना, ध्यान से बात करना। ठीक है ना, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरे पुलिस वाले जो है ना वो आ नहीं गए, वो तुम्हारे साथ ही हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से बात करना, सोच समझ करके बात करना। लिखा था कि वॉजंट मस्जिद कुबा द फर्स्ट मस्जिद, कुबा वॉज द फर्स्ट मस्जिद, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का जो ये इन्होंने लिखा हुआ है गालबन इस वजह से लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक उन्होंने फंड किया था। कुबा का मामला ऐसा नहीं था कि किसी ने फंड किया था, वो तो कुबा के रहने वाले लोगों ने जो है वो वहाँ पे मस्जिद बनाई थी, लेकिन आई कैन बी रॉन्ग, मतलब हो सकता है कि मुझे याद नहीं आ रहा हो, मस्जिद कुबा जो बनाई थी तो उसमें भी शायद करेक्शन हुई थी, मुझे इस याद नहीं आ रहा कि उसमें भी शायद अबू बकर सिद्दीक उन्होंने पैसे दिए होंगे तो उस वजह से उन्होंने ये बात लिखी है। अच्छा, तफसीर यहाँ पे असल में है नहीं। अच्छा, तो इन्होंने जो है ना वो जुबान को ऐसे खींच रहे थे तो कहने लगा कि इसी जुबान ने तो मुझे तबाह किया है। ठीक है, इसी वजह से अल्लाह ताला से बहुत जो है ना वो दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह कभी मेरी जुबान से कोई ऐसा कलमा ना निकल जाए कि जिसकी जो है ना मैं तलाफी ना कर सकूं, जिसकी मैं यानी कोई गलत कलमा ऐसा निकल गया कि जिसके बाद जो है ना यानी माफी भी नहीं मांगी जा सकती इसको। ठीक है, जो कि माफ नहीं हो सकता जिस, तो डरते रहना चाहिए क्योंकि जुबान एक ऐसी चीज है कि जो कि बहुत स्लिपरी होती है। ठीक है ना, स्लिपरी, राइट, इवन फिजिकली अगर आप उसके ऊपर कोई चीज रखे ना तो वो फिसल जाएगी। ठीक है, जुबान के ऊपर वो भी तो है ना, सलाइवा भी तो होता है ना, थूक भी तो होता है, तो इस वजह से जुबान स्लिप ऑफ द टंग का लफ्ज अंग्रेजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, स्लिप ऑफ द टंग, यानी कोई गलत बात जुबान से निकल जाए। तो कभी ऐसी बात होती है कि जिसके ऊपर फिर ऐसा उसका इफेक्ट हो जाता है, अब आप उसके ऊपर माफी भी नहीं मांग सकते अगले बंदे से, तो डरते रहना चाहिए। ज्यादा जो बोलने वाले होते हैं वो बहुत मुश्किल में होता है। ठीक है, तो अगर जरूरत नहीं है तो फिर ना बोलें, और अगर जरूरत है तो फिर डर डर करके बात करें। बहरहाल, तो एक दफा आपने पीने के लिए पानी मांगा, लोगों ने पानी में शहद मिलाकर पेश कर दिया, क्योंकि बहुत सारे माशाल्लाह इतने माल और दौलत आ रहा था, माल गनीमत आ रहा था, जिहादों के बाद, जिहाद के बाद आता था, तो आपने प्याला मुंह से लगाया तो रोने लगे, जो लोग पास मौजूद थे तो वो भी आपको देख करके रोने लगे, तो थोड़ी देर रोते रहे फिर चुप हो गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर रोने लगे। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि एक दिन मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को धुतकार रहे हैं। धुतकार रहे यानी दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, बड़े हो जाओ, ऐसे धुतकारना कहते हैं। ठीक है, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि अल्लाह के रसूल साहब आप किस चीज को धुतकार रहे हैं, तो आप मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, आप किस चीज को धुतकार रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मेरे सामने दुनिया को जिस्म दे करके मेरे सामने भेज दिया गया, जैसे एक जिस्म की हालत में दुनिया मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन वो फिर आ गई, फिर मैंने उससे कहा मेरे सामने से हट जाओ, तो फिर दुनिया कहने लगी कि यानी दुनिया आंटी, आंटी की शक्ल में आई थी हाल में, ठीक है। तो वो आंटी कहने लगी कि आप तो मुझसे बच के निकल जाएंगे, लेकिन आपके बाद जो लोग आएंगे ना वो मुझसे नहीं बच सकेंगे, यानी मेरी मोहब्बत जो है ना वो उनके ऊपर गालिब आ जाएगी, वो मुझे हटाने की बजाय वो मुझे अपने पास आना पसंद करेंगे कि आ जाओ और दुनिया आ जाओ और दुनिया आ जाओ, ठीक है। तो मेरे बाद आने वाले लोग जो है ना वो मुझसे नहीं बच सकेंगे। तो ये वाकया बयान करके अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि इस वक्त मुझे यही बात याद आ गई और मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं यह दुनिया मुझसे चिमट ना जाए, ठीक है। यानी दुनिया की ये लग्जरी आ रही है ना कि मीठा पानी मुझे मिल रहा है पीने के लिए, शहद मिला हुआ पानी मिल रहा है पीने के लिए, ठीक है। तो ऐसा खौफ था इनके अंदर, अगरचे कि ये जायज था, हलाल था, और हम जैसे लोग जो हैं वो अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें और कोई गुनाह का काम ना करें तो हमारे लिए बिल्कुल सही है, मतलब उनके लिए भी सही था, लेकिन उनका दर्जा ऐसा था कि उन्होंने जो है ना वो इसको भी पसंद नहीं किया। अच्छा, खिदमत खल्क इनकी कैसी थी कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना औरत रहती थी, तो उमर अज़तान को पता चला कि अच्छा एक नाबीना यानी ब्लाइंड औरत है, तो मैं ना इसकी खिदमत करता हूँ। तो उस ज़माने में एक रजिस्टर बना हुआ था कि जिसमें जो ऐसे लोग रहते थे ना जिनको के कोई हेल्प करने वाला उनका फैमिली मेम्बर नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर बनाया हुआ था, ठीक है। उस रजिस्टर के अंदर ऐसे लोगों का नाम लिखा हुआ था और कौन असाइंड है उनकी मदद करने के लिए, ठीक है ना, उनको हेल्प आउट करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए। तो किसी गरीब आदमी का, किसी नाबीना औरत का, किसी ऐसे का नाम लिखा और उसके आगे जो है वो किसी सहाबी का नाम लिखा कि भाई ये इनकी मदद करेंगे, ये इनकी खिदमत करेंगे। एक थी, एक नाम था उस रजिस्टर के अंदर और किसी का नाम आगे नहीं लिखा हुआ था खिदमत करने के लिए। तो उमर रजान ने कहा कि अच्छा मैं इनकी खिदमत कर लेता हूँ। तो जब ये खिदमत की नीयत से उनके घर पे पहुंचे ना कि भाई अब मैं आपका पानी वानी ला के घर में रख दूं और सफाई वफाई कर दूं और कुछ और आपके काम है तो वो कर दूं, तो उन आंटी से पूछा कि मैं आपके ये वाला काम, उन्होंने कहा तुम तो कौन हो तुम, मेरे सारे काम हो चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जाओ। समवन केम एंड डिड ऑल द वर्क, वो जा चुका है काम करके, आप जाए। वो तो उनका अच्छा कौन है, नाम भी नहीं लिखा हुआ था रजिस्टर के अंदर। तो उनको जस्तजू हुई, उन्होंने कहा चक्कर में ना और जल्दी आता हूँ और देखता हूँ कि कौन इनका काम करके जाता है। तो वे जल्दी आए तो पता चला गया अभी भी काम हो चुका है। तो उन खातून ने कह दिया कि बेटा जाओ बेटा, तुम मेरा काम हो चुका है, तुम उसकी फिक्र ना करो। उमर अतान भी उमर अतान होते ना, उनको भी कोई लग जाती थी ना तो वो पूरा करके छोड़ते थे। तो अब जो है ना वो रात की तारीकी में ही ना, जो यानी जो बिल्कुल अंधेरे का वक्त होता है उसी में आकर ना चिट करके बैठ गया कि मैं देखता तो हूँ कि कौन आता है, मैं तो इतनी जल्दी आया था तो उससे भी पहले कोई आ गया, तो वो तारीकी में ही आ गए और छुप करके बैठ के देखने लगे। इतने में किसी के पाँव के चलने की आवाज आई, जब वो सामने आए ना तो पता चला कि वो तो अबू बकर सिद्दीक रजान थे, ठीक है। अबू बकर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा अंदर जा रहा था कुछ काम वाम करने की। अच्छा आप थे वो जो कि यहाँ पे आकर के इस नाबीन औरत का सारा काम कर दिया करते थे, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन अपना नाम भी लिखना पसंद नहीं किया था कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं खिदमत करता हूँ। अच्छा, खलीफा बनने से पहले आप मोहल्ले की बच्चियों की बकरियों का दूध दो दिया करते थे, यानी छोटी बच्चियों की जो बकरियां होती थी उनका दूध निकाल करके उनके घर में पहुंचा दिया दे देते हैं। अब आप खलीफा बन गए ना, तो एक छोटी सी लड़की परेशान हो गई कि अब मेरी बकरी का दूध कौन दुआ करेगा। तो बकर सिद्दीक रतान तक उसकी बात पहुंची तो उससे फरमाया कि मैं खलीफा तो बन गया हूँ, मैं खलीफा तो बन गया हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी बकरी का दूध दुआ करूंगा, तो तुम फिक्र ना करो, खिलाफत मुझे खिदमत खल्क से बाज नहीं रख सकेगी। अच्छा, ये खलीफा साहब के पास इतना टाइम कैसे होता था कि ये ऐसे काम कर लिया करते थे, ये बताएं। कभी मुश्किल सवाल भी होने चाहिए, आसान आसान ऊपर भी सुना दिया आपको, आप सुन के घर चले जाएंगे। खलीफा साहब हैं और खलीफा साहब के पास तो टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा काम होना चाहिए इनके पास, ठीक है। तो इनके पास इतना टाइम क्यों होता था कि ये जो है वो नाबीना औरत का जाकर के काम भी कर रहे हैं और जो है ये बकरी के बच्चे के बकरी का जो है वो दूध भी धो रहे हैं और कोई इस तरह के काम भी कर रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने सही जवाब दे दिया वैसे ऑनलाइन। ठीक है, तो आपके जवाब हम बाद में पढ़ते हैं, यहाँ से भी पूछ लें। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, दे हैड बरका इन देयर टाइम। तो बरका तो होती ही थी, ठीक है, वो उसका हम इनकार नहीं करेंगे, बरकत होती थी उनके वक्त के अंदर बेशक, लेकिन हम जरा फिजिकल टर्म्स में पूछ रहे हैं, ये मटीरियलिस्टिक टर्म्स के अंदर पूछ रहे हैं। तो एक मिनट, हजरत अबू बकर सिद्दीक रहता है अपने पर्सनल टाइम में से वक्त निकाल कर ये करते थे, पर्सनल टाइम से, ये भी बड़ा अच्छा जवाब है कि इनका कोई पर्सनल टाइम ही नहीं होता था, ये 24 आवर्स जो है वो काम करते रहते थे, तो इस वजह से इनके पास टाइम निकल आता था दूसरे काम करने का भी। अच्छा, इन्होंने अभी तक कोई जवाब,
बहुत कम होते हैं।
बहुत कम सोते थे, ठीक है, ये भी एक अच्छा जवाब है, कम सोते थे तो, लेकिन फिर भी 24 घंटे से ज्यादा तो टाइम ही आ सकता है ना उनके पास, ठीक है, तो उसी के अंदर सोना भी होता है, उसी के अंदर जो है वो अपने घर के काम भी करने होते हैं, वो भी जिम्मेदारी होती है, तो
बहुत
वक्त जाया नहीं करते थे, ये भी बहुत अच्छा जवाब है कि वक्त जाया नहीं करते थे। आप क्या बताना चाहिए?
वो आजकल के जो है वो अपने कामों को सुनको कोई गलत नहीं आता, क्योंकि हमें पास सैलरी बिल्कुल नहीं होती। और दूसरी बात ये कि उनकी जो खिलाफत थी उनका उसका मकसद ही था कि वो फिर मेरे खिलाफ करें।
खिलाफत का मकसद ये था कि वो खिदमत खल्क करें, बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन बाकी अच्छे जवाबों की तरह ये भी एक अच्छा जवाब है कि जब आपका कोई मकसद बन जाता है ना, ठीक है ना, जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई चीज बन जाती है, तो फिर यू आर एबल टू फाइंड टाइम, ठीक है ना, आप जो है उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा जवाब है, लेकिन अगेन दिस डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, द ऑब्जेक्शन कि भाई क्या उनकी जिंदगी में 24 आवर्स से ज्यादा बढ़ करके 48 आवर्स का दिन तो नहीं हो जाता था, वही 24 आवर्स आज भी हमारे पास होते हैं और उनके पास भी होते थे, ठीक है, बरकत एक अलग चीज है, ठीक है, बरकत होती थी कि कम वक्त में उनका काम हो जाता था, हमारा काम जो है वो अटक जाता है और हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है काम को मुकम्मल करने में, तो बरकत का मतलब ये होता है कि ज्यादा वक्त ना लगे, जल्दी से काम हो जाए, निबट जाए, ठीक है, लेकिन दे हैड अ टाइम टेबल, दे हैड अ टाइम मैनेजमेंट, टास्क ओरिएंटेड थे, माशाल्लाह, ये भी बड़ा उन्होंने टेक्निकल किस्म का जवाब दिया, अदर सहाबा यूज्ड टू हेल्प मी, ठीक है ना, ये इन्होंने जो जवाब दिया ना यहाँ पर, ये मैं असल में आपसे पूछना चाह रहा था कि सोशल मीडिया की खराफात नहीं होती थी। अभी तो थोड़े दिन पहले भी नहीं होती थी, अभी शुरू हुई है ये, तो ये होता था कि सब काम कर रहे होते थे, इनको अकेले सारे काम नहीं करने पड़ते थे, ठीक है ना, जैसे कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने का अगरचे वाकया है, अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में ही हैं, लेकिन चूंकि हमने पिछली क्लास के अंदर बात करी थी तारीख जमुल कुरान, ठीक है ना, यानी कुरान को जमा करना, कंपाइल करने की जो पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट, सही है, कि ये जो जमा कुरान की मेहनत हुई थी, ठीक है, तो एक तो ये हुई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, ठीक है ना, और फिर ये मेहनत दोबारा कब हुई थी कुरान को जमा करने की, ये हुई थी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, ठीक है ना, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ये इनिशिएट कैसे हुई थी, क्यों ये शुरू हुई थी, कैसे ये शुरू हुई थी, कि हजरत हुजैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल थे, और ये आर्मीनिया के महाज के ऊपर, यानी आर्मीनिया आजरबाइजान की कंट्री जो है ना सेंट्रल एशिया के, ये वहां पर जिहाद में मशगूल थे, ठीक है ना, वहां पे इन्होंने देखा कि भाई लोग जो है ना वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ लहजों में तिलावत कर रहे हैं, और इसकी वजह से उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो रहा है, और जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये दोनों चीजें अलाउड हैं और तीनों चीजें अलाउड हैं, तो इसमें इख्तलाफ नहीं करने की जरूरत है, तो लोगों में ना फिर एक एक लड़ाई और एक इस किस्म के मसले पैदा हो रहे हैं, तो वो फिर मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, तो उन्होंने आकर के उस्मान गनी रतान को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है, तो ये जब मैं पढ़ रहा था, और अब इंशाल्लाह क्लास के अंदर पढ़ाना भी है, तो जहन में यही बात आ रही थी कि देखिए ऑल द सहाबा दे वर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है ना, दे वर सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते थे, ठीक है ना, और जो काम वो खुद कर सकते थे वो खुद कर लेते थे, तो और जो काम वो खुद करने का उनका नहीं होता था वो खलीफा वक्त के पास ले जाते थे, ठीक है ना, और उनको जो है वो अच्छा मशवरा देते थे, उनको मुफीद गाइडलाइंस देते थे, उनकी मदद करते थे, इस तरीके से जो है ना वो एवरी वन वॉज हेल्पिंग आउट, ठीक है ना। आज के दौर के अंदर ज्यादा बड़ा मसला क्या होता है कि एक ही बंदा जो है ना वही रुल रहा होता है, वही मर रहा होता है, और वही जो है ना वो रो रहा होता है, और मदद करने वाले लोग नहीं होते, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है वो इसको कहते हैं कहत और रिजाल का जमाना, इसी वजह से उसको कहते हैं कहत और रिजाल। किसको कहते हैं कि भाई जो रिजाल होते हैं ना, जो कि अल्लाह के दीन की फिक्र करने वाले, अल्लाह के दीन का दर्द रखने वाले, राइट, ये बहुत कम हो गए। लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन तो कम नहीं हुई, राइट, रिजाल कम हो गए लेकिन जकर कम नहीं हुए। जकर तो बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है। तो अब फॉर एवरी मिलियन पीपल देर इज ओनली वन पर्सन टू वरी अबाउट देम, राइट, फॉर अनदर मिलियंस ऑफ पीपल देर इज ओनली वन पर्सन टू वरी अबाउट देम, ठीक है ना। तो अब काम कैसे होगा, अब काम कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता, ठीक है ना। दीन इस्लाम जो फैला है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने अकेले नहीं फैलाया है, राइट, ये सहाबा की मेहनतों के जरिए, सहाबा कराम की कोशिशों, मेहनतों, तआवन और हेल्प आउट करना और फिक्र, ये नहीं कि बगैर फिक्र के बाप जो काम कह दिया तो वो कर दिया बस, और कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना, अपनी तरफ से कोई फिक्र नहीं करनी, करनी है तो उल्टा मसले क्रिएट कर देना, कोई काम भी खराब कर देना है, ठीक है, ऐसे नहीं होता था, ठीक है। तो ये है मोड, ये है तरीका काम करने का, इसको जमात का काम कहते हैं। और फिर इसके अंदर बरकत होती है, इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा खैर फैलती है इसके अंदर ना, ठीक है। तो हमें भी इस तरह की सिफत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि वी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सल्यूशन, वी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सल्यूशन, ठीक है ना, नॉट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट रिमेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव, राइट, कि शेख साहब जो है वो मेरे क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स को जो है ना अब वो फिक्स करते रहे, राइट, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूं, शेख साहब आकर के फिक्स करें। अब शेख साहब क्या है भाई, उनके क्लोन बनाने पड़ेंगे फिर उनके इतने सारे क्लोन्स, जिस तरह वो भेड़ के क्लोन बनाए हुए थे ना उन्होंने, राइट, वो शेख साहब के भी क्लोन्स बनाते रहो, ऐसे नहीं होता काम, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन, और खैर, और सेल्फ मोटिवेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारी नियत अच्छी ना हो और जब तक कि हमारे अंदर दूसरों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा ना हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें प्रीरिक्विजिट हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनके साथ फिर हम फिर उसके बाद करें काम, करें उसके बाद खूब काम करें, फारिग मत बैठे उसके बाद बिल्कुल भी। अच्छा, वो अपना काम किसी पर डालते नहीं थे लाइक अस। अच्छा, रेशियो ऑफ गुड पीपल सेम, रेशियो ऑफ टोटल पर्सन इंक्रीजिंग दस रेशियो ऑफ गुड पीपल डिक्रीजिंग, ये बैठे ना घर के अंदर मैथमेटिक्स। अच्छा, कितने मिनट है, बस 4 मिनट है। तो अबू बकर सिद्दीक रतान ने इस तरह से इनकी, अच्छा क्या हुआ फिर उसको, लॉस्ट, अच्छा खिदमत खल्क हो गई। फिर इनके वजीफा के बारे में आप पहले भी सुन चुके थे कि उन्होंने बहुत ही कम वजीफा मुकरर किया हुआ था, और एक दफा उनकी बेगम साहिबा ने जो है वो हलवा बनाने के लिए कुछ सेविंग्स करनी शुरू कर दी, तो जब हलवा इनके सामने आया तो उन्होंने कहा अच्छा ये हलवा तुमने कैसे बनाया, उन्होंने कहा मैं सेव कर रही थी अपने वजीफे में से ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारा वजीफा हमारी जरूरत से ज्यादा है, जब भी तो तुम सेव कर सकती थी, चलो वजीफा कम करो, ठीक है, यानी अब जो मैं सैलरी लिया करूंगा, स्टाइपेंड लिया करूंगा बैतुल माल से, वो मैं और कम लिया करूंगा, क्योंकि मुझे जितनी जरूरत है तो बस उतना मैं लूं, जो सेव करने की चीज है वो मैं क्यों लूं। अच्छा, लोगों की तारीफ अगर होती थी तो लोग उनके तारीफें करते थे, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने बड़े हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो फरमाते थे कि तुम लोगों ने मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है। कोई आपकी तारीफ करता था तो दिल में कहते थे कि अल्लाह तू मुझे इन लोगों के ख्यालात के मुताबिक बना दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और इन लोगों की बेजा तारीफ पर मेरी पकड़ ना कर, ठीक है। देखें, एक सवाल करके हम आज की क्लास खत्म करते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज में से पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद सवाल करके क्लास, कि आप दूसरों का तो मामूली से मामूली काम भी कर देते थे लेकिन खुद दूसरों से जरा सा काम लेना भी पसंद नहीं करते थे। ऊंट पर सवार जा रहे होते थे और ऊंट की नकील गिर पड़ती तो उसे बिठा कर नीचे उतरते, और फिर उसकी जो यानी कोई चीज गिर गई है ना नीचे, नकील जैसे उसको, तो उसको उठाते थे खुद से, ऊंट को बिठाते थे, फिर वो उठाते थे। किसी गुजरने वाले से नहीं कहते थे कि भाई इधर आइए उठा देना, तो लोग आपसे कहते भी थे कि आप इतनी जहमत क्यों गवारा करते हैं, पहले ऊंट को बिठाते हैं फिर चीज को उठाते हैं, आप हमसे कह देते, हम आपको उठा कर दे देते। तो फरमाते थे कि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं लोगों से किसी चीज का सवाल ना किया करूं। ये कुछ खास सहाबा थे जिनको नबी अलैहि सलाम ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि किसी से सवाल नहीं करना। तो सवाल ना करना से वैसे तो मुराद ये होती है कि भाई किसी के सामने भीख ना मांगना, किसी से जो है ना वो माली मदद ना मांगना, है ना, अपने खुद से अपने पैरों पे खड़े होना जो कर सकते हो, और कम में गुजारा कर लेना, ये मतलब होता है। लेकिन इन्होंने उसको जो है वो लिटरली ले लिया, लिटरली का मतलब बिल्कुल जाहिरी अल्फाज जैसे होते हैं ना वैसे ही ले लिया, सवाल न करना। अब इन्होंने किसी से सवाल नहीं करना, सवाल करने का मतलब ये मांगना किसी से। तो अब जो है ना वो अगर वो आपके हाथ का जो वो है जानवर को करने वाला जो हंटर कहते हैं उसको, चाबुक, वो भी अगर गिर जाता था ना, वो भी जानवर को पहले बिठाते थे उसको उठाते थे, कोई भी चीज होती थी वो खुद ही करते थे, नबी अलैहि सलाम ने मना किया सवाल करने से, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा जो है नबी अलैहि सलाम की बात के ऊपर अमल की कोशिश करते थे। अच्छा, सवाल क्या करना था आपसे? हाँ, सवाल क्या करना था? सवाल ये करना था कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, ठीक है। तो अब ये सवाल जो है ना मुझसे असल में किसी ने 25 साल पहले किया था, क्योंकि ये आजिज़ फ़कीर अलहमदिल्ला अल्लाह की तौफीक से अदा जी की जो है वो हमारे शेख उनकी वेबसाइट है ना tasawwuf.org, पहले होती थी, अब तो tasawwuf.co के नाम से होती है, तो उसको मैनेज करता था ये आजिज़। तो उसके ऊपर जो है ना वो जो क्वेश्चंस आते थे ना, उसमें भी एक होता है ना वो कॉन्टैक्ट अस वाला एक ऑप्शन होता है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट में एक मैसेज लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आते थे तो वो मेरे पास ये सारे आते थे, तो मुझे उसके जवाब देने होते थे और वेबसाइट को अपडेट करना और ये सारे काम भी करने होते थे। तो एक दफ़ा ना किसी ने ये वाला सवाल भेजा था जो मुझे अभी याद आ गया है आप लोगों के लिए। तो उसने ये पूछा था कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, आप लोग तो ये कहते हैं ना, ठीक है। तो अब आपसे सवाल ये करना है कि शेख का शेख कौन होता है, राइट? शेख के ऊपर तो कोई शेख नहीं होता, तो फिर तो शेख का शेख शैतान होता है इसका मतलब, राइट? तो शेख साहब का शेख शैतान हुआ तो फिर तो सारे गए, राइट? सारे गए ना, क्योंकि शेख साहब के शेख शैतान, क्योंकि उनका कोई शेख ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिखा दादा शेख, दादा शेख तो कब्र में पहुंच चुके हैं कब्र वालों की बात नहीं होती, हजरत गुलाम हबीब रहमतुल्लाह तो कब्र में है ना भाई, ठीक है, तो कब्र वालों की बात की थोड़ी होती है, कब्र से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही हो, तुम हिदायत नहीं आ रही हो, ये हमारा अहले सुन्ना वल जमात का अकीदा है जी।
वो जब उनको ज़्यादातर खिलाफत मिली होती है तो मतलब ये होता है कि उनकी तबीयत हो चुकी होती है, पहले तबीयत होती
तरबियत हो चुकी होती है, तो तरबियत तो वो भी कर रहे होते हैं ना दूसरों की, तो सीखने की तो चीज फिर भी रहती है ना, ठीक है, तो तरबियत तो वो करते रहते हैं। तो शेख का शेख ना होने का मतलब ये होता है कि शेख जो होता है ना, दे ट्रांसफर देयर परफेक्शन टू द पीपल हु दे गिव खिलाफा परफेक्शन, नो वन इज परफेक्ट, माइंड इट, नो वन इज परफेक्ट, नीदर इज द शेख, ठीक है, परफेक्शन इज ओनली फॉर अल्लाह, सही है। वो शेख ही नहीं जिसका शेख नहीं उनके शेख का इंतकाल हो गया है भाई, यही तो आपको बोल रहे हैं, उनके शेख का इंतकाल हो गया है, अब वो नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो फिर शेख का अल्लाह ही हाफिज, राइट, शेख का अल्लाह ही हाफिज, और बाकी ऐसे ही होता है कि शेख का अल्लाह ही हाफिज होता है, लेकिन क्यों?
इल्हाम
इल्हाम होता है, नहीं, इल्हाम भी हर चीज के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो भाई देखें, बात ये होती है कि ये जो इंसान गलती करता है ना, बल्कि गलती से मुराद ये है कि इंसान जो है ना जो जो गुनाह करता है, ठीक है, और यानी बुराई के रास्ते के ऊपर चलता है, ठीक है ना, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह क्या होती है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मुस्तफा भाई,
नफ्स
शैतान बहकाता है, तो शैतान
नफ्स
नफ्स बहकाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब शैतान खुद ही नहीं था तो फिर उसको किसने बहकाया, उसके नफ्स ने बहकाया। ठीक है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आखिरी क्लास के अंदर आपने नफ्स का जवाब दिया था, नफ्स वाला जवाब दिया था। ठीक है, तो इंसान का नफ्स जो होता है ना वो उसको बहका रहा होता है। तो जब इंसान अपने नफ्स को कुचल कुचल करके, कूट कूट करके, जब उसको बिल्कुल जो है ना वो यानी खत्म कर देता है ना, तो अब जो है ना उसको शैतान जो है वो बहका नहीं सकता। कभी कभी गलती हो सकती है शेर से, लेकिन उस गलती के ऊपर जो है वो कायम नहीं रहेगा, क्योंकि उसका नफ्स का जो है ना वो तिया पाचा हो चुका है। राइट, तिया पाचा समझते हैं, मार मार के उसको बिल्कुल भुरकस बना करके उसको जो है ना वो कर दिया गया खत्म। ठीक है, तो अब अगर उसकी गलती होगी तो क्या होगा, कोई दूसरा आकर के उसको बताएगा कि भाई आपसे ये गलती हो गई, आप वो कहेगा हाँ इनसे गलती हो गई। ठीक है ना, तो आज सुबह हम अंकल्स की क्लास के अंदर हजरत जी की किताब बादब बानसी में से यही पढ़ रहे थे। ठीक है, कि उस्ताद जो होता है ना, उस्ताद भी तो एक तरीके का शेफ ही होता है, तो आदाबुल मुअल्लिमीन पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हजरत ने यही लिखा हुआ था, बार बहुत सारे वाकयात लिखे हुए थे कि भाई उस्ताद से भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो उस्ताद को अगर कोई तालिब इल्म भी आकर के बता दे ना कि आपकी ये गलती हो गई है, आपसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो मान लेना चाहिए अपने तालिब इल्म की बात। ठीक है ना, इसमें जिद नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर जो है वो अकड़ नहीं करना, तुमने कैसे कह दिया मैं तो उस्ताद था, राइट, और तुम तो शागिर्द थे, तुमने कैसे जो है वो मेरी गलती निकाल ली, तुमने कैसे, राइट। शागिर्द को भी तमीज से अदब से गलती बतानी चाहिए, लेकिन उस्ताद को भी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो शेख की अब जरूरत क्यों नहीं रहती, क्योंकि अब जो है ना उसके नफ्स की इसलाह हो चुकी है, अब उसके अंदर से तकब्बुर, जिद, अनानियत, हठधर्मी ये खत्म हो चुकी है। अब वो गलती करेगा भी तो दूसरा आकर के कोई उसको बता देगा, ठीक है, कोई अल्लाह का बंदा बता देगा, कोई जो है वो उसके बच्चा कोई बता देगा, अंकल आपसे गलती हो गई, राइट, कोई उनकी बेगम साहिबा बता देंगी, सबसे अच्छी तो बताने वाली बेगम साहिबा खुद होती है घर के अंदर, शेख की पल पैदा भी एक शेख होती है बेगम, उसको कहते हैं। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपनी जगह पे रहते हैं। तो इस वजह से ना यही मामला है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक खतान की बिल्कुल यही मिसाल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एनाइहिलेट कर दिया था ना, अपने नफ्स को जो है वो बिल्कुल कुचल दिया था, तो अब वो ऐसे नहीं थे कि जी मुझे कोई, अब तो हर बंदा ही उनकी इसलाह कर सकता है। तो ऐसे बंदे के जो है ना फिर क्या हो जाता है, सॉरी एक्स्ट्रा टाइम एज यूजल फिर ले लिया, कि जो अंडर तरबियत होते हैं तो उनके तो शेख की जरूरत होती है। ठीक है, और उनका अगर कोई शेख नहीं होता तो उनका शेख शैतान होता है, लेकिन जो शेख हो जाता है ना फिर, यानी खर अब शेख हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उनको खिलाफत मिल गई तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बन गए, नहीं ऐसा नहीं होता, यानी किसी को जो है वो सनद मिल गई तो अब जो है वो 100% उस्ताद को थोड़ी बन जाता है, अब भी उस्ताद बनने में भी और अच्छा उस्ताद बनने में टाइम लगता है। उसी तरह से खिलाफत मिल गई, अजय जी ने खिलाफत दे दी, अब वो परफेक्ट हो गए बिल्कुल, है अब उनका नफ्स मर गया, नहीं ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट, ठीक है ना, इन द राइट डायरेक्शन, तब कहीं जाकर के आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं। तो अब ये होता है कि जो ऐसा शेख होता है ना जिसका ऊपर कोई शेख नहीं होता, जैसे हमारे हजरत हैं, उनके शेख का इंतकाल हो चुका है, ठीक है ना, अब उनका क्या मामला होता है, उनका मामला ये जुमला सुन करके याद रखिएगा, उनका फिर हर कोई शेख होता है। राइट, शेख का फिर हर कोई शेख होता है, वो हर जगह से इस्लाह के लिए तैयार हो, राइट, कोई भी आकर के उनकी इस्लाह कर दे, अगर वो दलील के साथ बात करेगा, प्रूफ करेगा, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत था, आप सही थे, मैं आपकी बात मान रहा, मैं आपकी बात के ऊपर अमल करूं। अब उनका शेख जो है वो, ये भी इनका शेख हो सकते हैं, राइट, ये भी इनके शेख हो सकते हैं, ये भी उनके शेख हो सकते हैं, हत्ता कि दीवार भी उनके शेख हो सकती है, दीवार भी उनका शेख होती है, कैसे कि दीवार के ऊपर अगर कोई नसीहत लिखी हुई होगी ना, वो उसको भी देखेंगे, अपनी गलती को मानेंगे, रोना शुरू कर देंगे, तस्लीम कर लेंगे, बाकी मुझसे गलती हो गई, देखो अल्लाह ताला ने मुझ तक दीवार के जरिए से मैसेज पहुंचा रहा है, राइट, कभी किसी का बयान सुनेंगे वहां से उनको नसीहत मिल जाएगी, कभी किसी की बात नहीं है, किसी से भी, हत्ता के काफिर से भी वो नसीहत कबूल कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है, सही है, अल्लाह ताला हमें ऐसा बनने की तौफीक, ऐसे बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتشاء أتشاء أتشاء